प्रश्नोपनिषद की चर्चा प्रवचन सत्र में हम लोग कर रहे हैं। कल उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ पर चर्चा हुई कि उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का वृत्ति, जो हमारे जन्म मरण के हेतुभूत अविद्या काम कर्म को उनके समीप में प्रकट होकर के समाप्त कर दें, उसे उपनिषद कहा जाता है। अविद्या काम कर्म को समाप्त करती है ब्रह्म विद्या ही, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति रूपा ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है। और वही हमारे विस्मृत ब्रह्म भाव की उपलब्धि भी हमें कराती है, इसलिए भी अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति को उपनिषद कहा जाता है। और अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति से अतिरिक्त दूसरी उपासनात्मक जो वृत्ति है, सगुण ब्रह्म विषयक वृत्ति, उसे भी उपनिषद कहा जाता है, इसलिए कि वह हमारे जन्म मृत्यु को शिथिल कर देती है। जो जन्म मृत्यु को शिथिल कर दे उसे भी कहा जाता है उपनिषद। सद धातु का एक वो भी अर्थ होता है। तो उपासना उपासक को उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक प्राप्त कराती है, और ब्रह्मलोक में जिनका प्रवेश होता है उनका फिर इस कल्प में जन्म नहीं होता है। अगले जो कल्प की उत्पत्ति होगी उस समय यदि ब्रह्मलोक में उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो जन्म होगा। तो इतने समय के लिए तो एक बार ब्रह्मलोक में पहुंचा तो एक महाकल्प के समाप्ति तक आना जाना रुक गया, शिथिल हो गया। इसलिए माना जाता है सगुण ब्रह्म विद्या भी उपनिषद शब्द का अर्थ है। और ग्रंथ को भी उपनिषद कहा जाता है, इसलिए कि वह जो ज्ञानात्मक उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ हुआ वृत्ति, वह वृत्ति प्राप्त होती है ग्रंथ से, तत्वमशादि वाक्यों से, इसलिए उन्हें भी उपनिषद कहा जाता है। वो है उपनिषद शब्द के मुख्यार्थ प्रमात्मिका वृत्ति का साधन, इसलिए गौण रूप से उपनिषद। और अलग अलग उपनिषदों के अलग अलग नाम हैं, ईशावास्यम इत्यादि बताया गया था। ऐसे प्रश्न उपनिषद उपनिषद शब्द के साथ प्रश्न शब्द जुड़ गया तो प्रश्नोपनिषद ये नाम हुआ। प्रश्न शब्द क्यों जुड़ गया? कठोपनिषद में कठ शब्द इसलिए जुड़ गया कि वो कठ शाखा की उपनिषद है, इसलिए कठोपनिषद। केनोपनिषद में केन शब्द इसलिए जुड़ गया कि उपनिषद शब्द के साथ कि उस उपनिषद का प्रारंभ केन इस शब्द से है, इसलिए उसे कहा गया केनोपनिषद। लेकिन यहां प्रश्न न तो कोई शाखा है प्रश्न नाम की और न तो कोई प्रश्न इस नाम से इस उपनिषद का प्रारंभ हो रहा है, तो भी प्रश्न शब्द उपनिषद के साथ जुड़ा। वह इसलिए कि सुकेशा आदि छह ऋषि आचार्य पिपला जी के पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के जाते हैं और उनकी आज्ञा से जितने एक वर्ष का समय दिया उनको कि हाँ एक वर्ष तक रहो और फिर जिसका जो जिज्ञास्य है तद विषयक प्रश्न हमें करो और वे प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्न के उत्तर के माध्यम से यही ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। इसलिए प्रश्न शब्द उपनिषद के साथ जुड़ गया और प्रश्न उपनिषद ये नाम हुआ। यहां छह ऋषि अलग अलग छह प्रश्न करेंगे और उन छह प्रश्नों का जो उत्तर मिलेगा वह ब्रह्म विद्या होगी। इसलिए उसे इस उपनिषद को कहा जा रहा है प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में सुकेशा आदि छह ऋषि कृतकर्मा हैं, कृतोपास्ति हैं। उन्हें जो सगुण ब्रह्म है उसी का चिंतन करते करते निर्धारण हो गया और उपासना का परिपाक हो गया और उपासना के परिपाक का द्योतक होता है जैसे भोजन पूर्ण हो गया किसी का, इसका द्योतक होता है कि उसकी क्षुधा निवृत्त होगी, तृप्ति आएगी उसके अंदर, तो माना जाता है भोजन पूरा हुआ। ऐसे कोई भी साधन जब पूरा हो जाता है, संपन्न हो जाता है, साधन संपन्न व्यक्ति होता है तो उस साधन का जो फल शास्त्र ने बताया वह उसके जीवन में दिखता है। कृतकर्मा उसे कहा जाता है कि कर्म का जो फल है वह जिसके जीवन में दिखे। कर्म का फल है चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि का फल है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल है अंतक वैराग्य अनित्य वस्तु के प्रति, और नित्य वस्तु जो परमात्मा है उसे प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। तो अनित्य संसार के प्रति वैराग्य हो जाए तो माना जाता है कि कृतकर्मा है। कर्म ईश्वर अर्पण बुद्धि से निष्काम भाव से किए बिना अंतकरण की शुद्धि नहीं होती, शुद्ध अंतकरण के में ही वह विवेक होता है और विवेक से ही वैराग्य होता है। तो विवेक पूर्ण वैराग्य यदि किसी के चित्त में है, परमात्मा से अतिरिक्त सब अनित्य प्रतीत हो रहा है, गीतादि शास्त्र ब्रह्मलोक पर्यंत के संपूर्ण संसार को अनित्य बता रहे, आ ब्रह्म होना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन इत्यादि से, और वैसे ही यदि किसी व्यक्ति को ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग अनित्य प्रतीत हो रहा है तो माना जाता है कि उसका चित्त शुद्ध है। शुद्ध दर्पण में दर्पण के सामने जो खड़ा होगा व्यक्ति उसकी उसके चेहरे पे सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई तील भी होगा, दाग होगा वो दिखेगा, और मलिन दर्पण होगा तो चेहरा पूरा स्पष्ट नहीं दिखेगा, वो दाग तो दिखना, सूक्ष्म दाग दिखना तो कठिन। तो अंतकरण से संसारगत अनित्यतादि दोष दिखेंगे तो मन अपने स्वभाव के अनुसार जहां दोष दिखते हैं वहां राग नहीं करता, जहां उसे दोष होने पर भी दोष दर्शन नहीं होता वहीं पर राग होता है। आसक्ति होती है। तो जब शुद्ध चित्त से कर्म फलभूत संसार में राग क्या नाम दोष प्रतीत होंगे अनित्यतादि, तो राग नहीं होगा, तो कृतकर्मा कहा जाता है। और कृतोपास्ति कहा जाता है, उपासना का फल है चित्त को चंचलता नामक दोष से रहित करना, विक्षेप की निवृत्ति। उपासक का चित्त विक्षिप्त नहीं होगा। यदि चित्त में विक्षेप है, चित्त स्थिर नहीं होता, तो समझना चाहिए पहले हमारी उपासनाएं नहीं हुई हैं, हमने उपासना की नहीं। यदि भूख है तो निश्चित है भोजन नहीं किया है। भोजन भूख की निवृत्ति के लिए भोजन करना जरूरी है, ऐसे चित्तगत विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना करना जरूरी है। बिना उपासना के चित्त स्थिर नहीं होता, विक्षेप रहित नहीं हो पाता। और ये सुकेशा आदि छह के छह ऋषि शुद्ध चित्त हैं और समाहित चित्त हैं। ये जो उपासना और कर्म का फल है, शुद्ध चित्त होना और समाहित चित्त होना, वह उनके जीवन में दिख रहा है, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वे कृतकर्मा हैं, कृतोपास्ती हैं ये ऋषि। और सगुण की उपासना जब करता है साधक, तो वह उपासना धीरे धीरे आपके अंदर निर्गुण की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। सगुण ब्रह्म कभी भी अपना दास बनाए नहीं रखना चाहता कि हमेशा मेरी उपासना ही करता रहे, मेरी प्रशंसा ही करता रहे। ये तो उसे लगेगा जो प्रशंसा का भूखा होगा। जो परमेश्वर है सगुण ब्रह्म, वह प्रशंसा का भूखा नहीं है। वह तो जब चित्तगत सारे दोष निवृत्त होते हैं, योग्यता आती है, तो अपने पारमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा उस चित्त में प्रकट कर देते हैं, और निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो ये तीनों छह ऋषि सुकेशा आदि कृतकर्मा कृतोपास्ती होने से, ईश्वर के अनुग्रह से, उनके बुद्धि में पर ब्रह्म की जिज्ञासा हुई और एकत्रित होकर के पर ब्रह्म का अन्वेषण करने लगे, खोज करने लगे। तो पर ब्रह्म का अन्वेषण करते करते इस निर्णय पर पहुंचे कि इस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है आचार्य पिपलाद जी की, पर ब्रह्म के ज्ञाता के रूप में और उपदेष्टा के रूप में। वे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, और श्रुति कहती है कि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित्पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो वे उस समय के जो प्रसिद्ध और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं आचार्य पिपलाद जी, सब ने निश्चय किया कि हम आपस में विचार करते रहेंगे तो परब्रह्म का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। जो परब्रह्म का अच्छी तरह से मैं के रूप में अनुभव प्रतिपल करते हैं, उन्हें ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है, और ब्रह्मनिष्ठ के रूप में प्रसिद्ध हैं आचार्य पिपलाद जी। वे हमारी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। ये निश्चय करके छह के छह एक साथ आ जाते हैं आचार्य पिपलाद जी के आश्रम में और आकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमें हमारे जिज्ञास्य परब्रह्म का उपदेश करिए। तो आचार्य जी सीधे सीधे इन्होंने तो जिज्ञासा प्रकट की कि आपके गुरुकुल में हमें प्रवेश कराइए, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ठीक है, आपका व्यवहार देख करके हमें लगता है कि आप जिज्ञासु हैं और जिज्ञासु के लिए हमारे आश्रम के द्वार खुले हैं, लेकिन ये नहीं कि आज ही आप आए हो और आज ही उपदेश मैं करूं। आपको यद्यपि पहले से आप तपस्वी हो, ब्रह्मचारी के करने योग्य कर्म कर चुके हो और श्रद्धावान भी हो, लेकिन और भी एक वर्ष तक इन तीन साधनों को करते हुए इस आश्रम में रहना होगा और तब तक कुछ पूछने का कोई अधिकार नहीं। एक वर्ष तक ये साधनाएं करो, उसके बाद फिर जिस आप छह में से जिसकी जिज्ञासा जिस अर्थ विषयक होगी उस विषयक प्रश्न करो। यदि उस प्रश्न का उत्तर मैं जान सकूंगा तो दे दूंगा। तो ये यदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो यदि का अर्थ ये नहीं होता कि नहीं जानेंगे तो फिर एक वर्ष तो चला गया इनका व्यर्थ, एक वर्ष तो अपना आश्रम का काम करा लिया, सेवा भाव करा लिया, उनसे तपस्या आदि हो गई, और एक वर्ष बाद जो भी पूछेंगे कहेंगे कि इसका तो उत्तर मैं नहीं जानता, पहले ही कह दिया था कि यदि जानूंगा तो दूंगा। तो लेकिन इनका तो एक वर्ष बर्बाद होगा कि नहीं होगा। तो कहते यदि शब्द का अर्थ ये नहीं, लेकिन उनकी निराभिमानिता दिखाने के लिए यदि शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वे सब जानते हैं, ये निर्धारण सुकेश आदि ऋषियों को भी है कि वे सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इनकी जो जिज्ञासा है उसे मैं शांत कर सकता हूं। तो भी यदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो अपने ज्ञान का अभिमान आचार्य पिपलाद जी में नहीं है, ये यदि शब्द का प्रयोग करके ज्ञापन करते हैं। एक वर्ष के लिए वहां रहें, तपस्वी बनकर के तपस्या कर रहे हैं, यानी जो थोड़ा बहुत दम नाम के साधन में कमी है वो कमी पूरी कर रहे हैं। दम कहा जाता है बाह्य इंद्रिय निग्रह को, शम कहा जाता है अंतर इंद्रिय जो मन है उसका निग्रह, और ज्ञान उपयोगी तप इसी को कहा जाता है। इंद्रियानाम मनसश्चैव हैकाग्र्यम परमम तप, ये कहा जाता है कि मुख्य उत्कृष्ट तप है बाह्य इंद्रियों का और अंतःकरण का निग्रह, यानी शम और दम। थोड़ी बहुत शम में और दम में जो कमी है वो पूरी करने के लिए कह रहे हैं। और ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है कि ब्रह्मचारिणः कर्म ब्रह्मचर्यम्, ब्रह्मचारी का जो कर्म होता है, ब्रह्मचारी का कर्म होता है विद्या उपयोगी साधनों से संपन्न होना और आचार्य सेवादि और श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए तीन साधन बताए, इन तीनों साधनों का बड़ा जीवन में महत्व होता है जिज्ञासु के। ये जो प्रश्न उपनिषद है ये है अथर्ववेद की, अथर्ववेद की ही मंत्र भाग की उपनिषद है मुंडक, और ब्राह्मण भाग की उपनिषद है ये प्रश्न उपनिषद। ये माना जाता है वेद मंत्र और ब्राह्मण दो भागों में विभक्त है, उसमें से मंत्र को माना जाता है व्याख्येय और ब्राह्मण भाग को माना जाता है व्याख्यान। तो मुंडक मंत्र है वह व्याख्या है, जैसा ब्रह्म सूत्र व्याख्या है और भाष्य उनका व्याख्यान है, गीता के मूल श्लोक व्याख्या है, व्याख्या कहते हैं जिसकी व्याख्या की जा रही है उसे व्याख्येय कहा जाता है, व्याख्या का विषय, व्याख्याने व्याख्यान स्पष्टीकरण विवरण। और जिस ग्रंथ का विवरण किया जा रहा है वो ग्रंथ हो गया व्याख्या, और जिस ग्रंथ में विवरण हुआ उसे कहा जाएगा व्याख्यान। गीता का व्याख्यान भाष्य है, भाष्य में विवरण गीता के मूल श्लोकों का हुआ, ब्रह्म सूत्र के मूल श्लोकों का हुआ, उपनिषदों के मूल श्लोकों का हुआ, इसलिए उसे व्याख्यान कहते हैं। ये मूल प्रस्थान त्रयी है व्याख्या भाष्यकार की। ऐसे मूल में भी ये प्रश्न उपनिषद माना जाता है ब्राह्मण भाग का होने से व्याख्यान, और मुंडक उपनिषद मंत्र भाग की है वो है व्याख्येय। तो व्याख्येय और व्याख्यान ये दोनों शास्त्रीय शब्द है, लेकिन इनका अर्थ समझ में आया होगा। व्याख्यान है जिसका स्पष्टीकरण, व्याख्यान, और जिसका स्पष्टीकरण है वो व्याख्या है। तो मुंडक का स्पष्टीकरण है ये प्रश्न उपनिषद। तो मुंडक में जो अर्थ बताया गया है उसी का व्याख्यान प्रश्न उपनिषद में है, वही अर्थ स्पष्ट किया जा रहा है तो माना जाएगा व्याख्यान। गीता का व्याख्यान भाष्य को तब माना जाएगा कि गीता का मूल, गीता के श्लोकों के द्वारा जो अर्थ संक्षेप में बताया गया उसे विस्तार से सुस्पष्ट करके भाष्य में कहा जाए तो व्याख्यान माना जाएगा। ऐसे मुंडक उपनिषद का व्याख्यान प्रश्न उपनिषद तब माना जाएगा कि मुंडक उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसका स्पष्टीकरण प्रश्नोपनिषद में हो। तो मुंडक में क्या बताया गया है? तो मुंडक में बताया गया सौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगिरा ऋषि के द्वारा, जैसे यहां सुकेश आदि छह ऋषियों के प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी दे रहे हैं प्रश्न उपनिषद में, व्याख्यान ग्रंथ में, ऐसे मूल व्याख्या ग्रंथ जो मुंडक उपनिषद है ना, उसमें भी सौनक का प्रश्न है और अंगिरा जी ने उत्तर दिया है। अंगिरा जी के पास जाकर के सौनक जी ने प्रश्न किया कि कस्मिन्नु भवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, हे भगवान वह कौन सी वस्तु है जिसे जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, वह कौन है? ये प्रश्न सौनक का है, और सौनक के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य अंगिरा जी ने मुंडक उपनिषद में दो विद्याएं बताई है कि दो द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच। तो दो विद्याएं हैं, एक पराविद्या और एक अपरा विद्या। उनमें से अपरा विद्या के भी अवांतर दो प्रकार हैं। अपरा विद्या कौन है तो कहा कि ऋग्वेदादि अपर विद्या है। ऋग्वेदादि यानी ऋग्वेद का कर्मकांड और यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का, चारों वेदों का जो कर्मकांड है ना, उसे कहा जाता है अपरा विद्या। अपरा विद्या और उस अपरा विद्या के भी अवांतर दो भेद हैं, एक कर्म और दूसरा उपासना। अपरा विद्या दो प्रकार की मुंडक उपनिषद में बताई गई, परा विद्या अपरा विद्या, ऐसी पहले दो प्रकार की विद्या बताई, फिर अपरा विद्या में दो भेद कर दिए। वे दो हैं कर्म और उपासना। कर्म को भी अपरा विद्या कहा जाता है और उपासना को भी अपरा विद्या कहा जाता है। और ये जो कर्म रूपी अपरा विद्या है उसका वर्णन यहां ब्राह्मण भाग के प्रश्नोपनिषद में नहीं हो रहा है, उसका वर्णन हुआ ब्राह्मण भाग में भी जो प्रश्नोपनिषद के पूर्ववर्ती ब्राह्मण भाग है उस भाग में। ब्राह्मण में भी तो कर्मकांड ज्ञानकांड दो भाग होता है ना, जैसे मंत्र में होता है, उसी से वर्णन कर्म रूपा अपरा विद्या का हो गया है। और अपरा विद्या में उपासना रूप अपरा विद्या बाकी है। उस अपरा विद्या को बताने के लिए प्रश्न उपनिषद में छह ऋषि हैं, छह ऋषियों के छह प्रश्न होंगे अलग अलग, और उन छह प्रश्नों में से पहले जो तीन प्रश्न हैं वे अपरा विद्या का स्वरूप सुस्पष्ट करने के लिए हैं। मुंडक उपनिषद में बताई गई अपरा विद्या का स्वरूप बताने के लिए, विस्तार से वर्णन करने के लिए पहले छह प्रश्न। तो छह प्रश्नों में भी जो पहला प्रश्न होगा वह अपरा विद्या के फल विषयक होगा, अपरा विद्या के फल को बताता है। अपरा विद्या का फल है संसार, अपरा विद्या का अनुष्ठान, अपरा विद्या है अनुष्ठान अनुष्ठेया। कर्म का भी अनुष्ठान किया जाता है, खाली वेदों ने कर्म का जैसा स्वरूप बताया वैसा स्वरूप जानने मात्र से, या उपासना का स्वरूप जैसा बताया ऐसा जानने मात्र से ही उसका फल नहीं मिलता, अनुष्ठान करना पड़ता है। जैसा वेदों ने कर्म का स्वरूप बताया वैसा ही अनुष्ठान कर ले, जैसी उपासना बताई है वैसी उपासना जीवन में करें तो उसका फल मिलता है। और वो कर्म और उपासना का अनुष्ठान होता है दो प्रकार से, एक तो संसार अंतःपाती तत्तत् फल की प्राप्ति के कामना से, प्राप्ति की इच्छा से कर्म और उपासना का अनुष्ठान होगा। वे संसार अंतःपाती तत्तत् फल की प्राप्ति की इच्छा के द्वारा प्रेरित होकर के किया गया कर्म और उपासना रूप अपरा विद्या फल देगी, वही जो फल चाहता है संसार अंतःपाती। और वो फल बताया गया इस लोक के उत्कर्ष से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का उत्कर्ष, वेदों के द्वारा कर्तव्य रूप से बताई गई अपरा विद्या का फल अभ्युदय है। अभ्युदय कहते हैं उत्कर्ष को, उत्कर्ष कहते हैं श्रेष्ठता को, विकास को, उच्च अवस्था को। तो अभी जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था से थोड़ी और उच्च अवस्था हमें प्राप्त हो, इस उद्देश्य से जो वेद ने साधन बताया वो कर लिया, तो संसार में ही रहेगा, लेकिन अभी जिस अवस्था में उससे थोड़ी ऊंची अवस्था पाएगा, उत्कृष्ट स्थिति रहेगी, श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। तो माना जाता है वो संसार अंतपाती फल अपरा विद्या का, सकाम अपरा विद्या का हुआ। और निष्काम अपरा विद्या का फल तो है चित्त शुद्धि और चित्त एकाग्री। कर्म रूपा अपरा विद्या का फल होगा चित्त शुद्धि, और उपासना रूपी अपरा विद्या का फल होगा चित्त की एकाग्रता। ये निष्काम भाव से अपरा विद्या का अनुष्ठान होगा तो वो फल होगा। तो पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न के कर्ता है इन छह ऋषियों में से कबंधी नाम के ऋषि। ये छह के छह एक वर्ष रहे, तपस्या और सेवा तथा श्रद्धादि करते हुए, और एक वर्ष के पश्चात आचार्य पिपला जी के पास जाकर के कबंधी नाम के ऋषि ने प्रश्न पूछा आचार्य जी की प्रसन्नता को देख करके कि इस समय ये प्रसन्न है हम पर, और हम यदि कुछ जिज्ञासा करते हैं तो उसका उत्तर दे सकते हैं। ऐसा उनको प्रतिवचन देने अनुकूल अवस्था में देख करके प्रश्न किया कि भगवान उतो हवा इमाह प्रजा प्रजायन्ते। हे भगवान, इमाह प्रजा यानी ये जो 84 लाख प्रकार के शरीर है, ये किससे उत्पन्न होते हैं? ये शरीर कार्य है ना, कार्य है तो बिना कारण का तो होगा नहीं। तो ये शरीरों का कारण कौन है, किससे मिलते हैं शरीर? तो यदि सकाम भाव से अपरा विद्या का अनुष्ठान करना छोड़ दे साधक, तो शरीर नहीं बनेंगे। फिर सकाम कर्म ही कर्मानुभव गच्छति जीव एक कहा जाता है ना, कर्म और उपासना सकाम, यही 84 लाख प्रकार के शरीरों को उत्पन्न करते हैं, साधन है। और ये कर्म उपासना उत्कृष्ट रूप से जिसने की है वो है प्रजापति हिरण्यगर्भ, और वो हिरण्यगर्भ ही सर्वात्मा बन करके इन सब की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रथम प्रश्न के उत्तर में ये बताया गया, और प्रजापति की ही स्वरूपता बताते हुए अंतिम प्रश्न मंत्र में कि अन्नम वै प्रजापति, अन्न ही प्रजापति है, और उस अन्न का यानी खाए हुए अन्न का, माता पिता के द्वारा खाए गए अन्न का जो अंतिम परिणाम है, उसी अंतिम परिणाम से ये शरीर बनते हैं, ऐसा उत्तर दिया। यानी प्रजापति शरीर का उत्पादक है। 84 लाख प्रकार के शरीर ये सकाम भाव से की गई अपरा विद्या के फल हैं। इस रूप में प्रथम प्रश्न तथा उसका उत्तर हो गया था गत वर्ष ही हमारे यहां प्रवचन में। और द्वितीय प्रश्न करने वाले ऋषि हैं, उनका नाम है भार्गव, और विदर्भ देश में रहते थे इसलिए वैदर्भी भी कहते हैं। और उनका प्रश्न है कि ये जो प्रजा है, शरीर है 84 लाख प्रकार के, इनको धारण करने वाला कौन है? का मतलब उपासना का स्वरूप स्पष्ट करना है, प्राण उपासना बतानी है, अपरा विद्या का फल बताया गया, और अपरा विद्या में से कर्म का विस्तार से वर्णन कर्मकांड में हो गया, और जो अपरा विद्या का द्वितीय अंश है उपासना, उस उपासना का वर्णन करने के लिए द्वितीय और तृतीय प्रश्न है। और एक उपासनाएं वेदों ने अनेकों प्रकार की बताई हैं, उसमें से उदाहरण के लिए एक यहां पर उपासना बताई जा रही है, प्राण उपासना, प्राण की उपासना। और उपासना शब्द का अर्थ होता है गुण चिंतनम उपासनम, गुण का चिंतन। आप उपासना कर रहे हैं किसी की, का अर्थ है जिसकी उपासना कर रहे हो उसके गुणों का चिंतन कर रहे हैं, दोषों का नहीं। दोष चिंतन तो माना जाता है जिसके प्रति द्वेष होता है, वो तो अनुपासना हो जाएगी बेटी, और उपासना है गुण चिंतन। तो प्राणों के गुणों का चिंतन माना जाएगा प्राण की उपासना। इसलिए प्राण की उपासना सिद्ध करने के लिए प्राण में कुछ गुण भी बताने पड़ेंगे ना। तो ये जो द्वितीय प्रश्न है गार्ग्य के द्वारा किया जाने वाला, उस द्वितीय प्रश्न में बताया जाएगा प्राण के गुणों को। प्राण में गुण है अत्रित्व, अत्रि कहा जाता है, अत्रि ऋषि नहीं, अत्ता, अत्ता कहते हैं खाने वाले को। भूख और प्यास किसका धर्म है?
प्राण का,
प्राण का धर्म है। इसलिए जिसको भूख लगेगी वही खाएगा ना, तो खाने वाला वो प्राण है। और प्राण जो अत्ता है वह उसमें एक गुण रहेगा अत्रित्व, और दूसरा ये वेष्टि प्राण नहीं समष्टि प्राण, वह प्रजापति भी है, उसमें प्रजापतित्व गुण भी है। प्रजा कहते हैं ये शरीरों को, और उनको धारण करके जो रखेगा उसे कहा जाएगा पति। पति का अर्थ होता है पालन करने वाला। तो शरीरों को धारण करके जो पालन करता है, बनाए रखता है, जो शरीर के विनाश से शरीर को बचाता है, वो होगा प्रजापति। तो शरीर को नाश से बचाता है प्राण। जब तक आपके शरीर में प्राण होंगे तब तक शरीर समाप्त नहीं हो सकता, और प्राण चले जा तो शरीर नष्ट हो जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राण है पति यानी शरीर का संरक्षक। प्रजा शब्द का अर्थ है शरीर, और उसकी संरक्षा करने वाला जो है उसे कहा जाएगा प्रजापति। और प्रजा की यानी शरीर की सुरक्षा करता है प्राण ही, इसलिए उसमें एक प्रजापतित्व गुण रहेगा। और शरीर को बनाए रखने के लिए चक्षुरादि भी कुछ कार्य करते हैं, इसलिए शरीर की पालन में उनके भी व्यापार की उपयोगिता है, इसलिए उनको भी गौण रूप से प्रजापति कहा जाता है, शरीर के धारक कहा जाता है। लेकिन शरीर को धारण करने वाले यहां कई एक बताए जाएंगे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? तो सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा प्राण को ही। तो इसलिए श्रेष्ठत्व गुण भी बताया जाएगा प्राण में। तो ये अत्रित्व प्रजापतित्व श्रेष्ठत्व आदि जो अनेक गुण है प्राण के, इन गुणों का निर्धारण होगा द्वितीय प्रश्न के उत्तर में, जो आचार्य विपला जी के द्वारा गार्गे के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, उस उत्तर से प्राण इन इन गुणों से युक्त है, ये निश्चित होगा, प्राण के गुणों का निर्धारण होगा। और फिर उन गुणों का चिंतन रूप जो उपासना है उसका विधान तथा प्राण के स्वरूप का निरूपण तृतीय प्रश्न के उत्तर में होगा। और ऐसे ये जो दो प्रश्न आ रहे हैं द्वितीय और तृतीय, ये अपरा विद्या का ही जो द्वितीय अंश उपासना है उस उपासना का निर्धारण करने के लिए यानी अपरा विद्या विषयक ही प्रश्न है, जो मुंडक में मूल में बताई गई कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, परा विद्या अपरा विद्या। और अवशिष्ट जो तीन प्रश्न रहेंगे चौथा पांचवा छठवा, इनसे परा विद्या का निरूपण होगा। और परा विद्या मानी जाती है अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, सेमुंडक में बताई गई तद अक्षरम यानी वह निर्विशेष ब्रह्म, और उसका अधिगम कहा जाता है प्राप्ति को। तो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति यानी उपलब्धि जिस विद्या से हो जाए उस विद्या का नाम है परा विद्या, अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, ये परा विद्या का लक्षण बताया। ये किसने बताया, किसको? अंगिरा जी ने सौनक जी को। वहां मुंडक उपनिषद में प्रश्नकर्ता सौनक जी है जिज्ञासु, और उत्तर देने वाले जिज्ञासा को शांत करने वाले अंगिरा जी। तो जिससे आपको निर्विशेष ब्रह्म भाव प्राप्त हो वह परा विद्या। निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है ज्ञेय ब्रह्म बोध से, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से, उसे आत्मज्ञान कहो निर्विशेष ब्रह्म विद्या कहो। यद्यपि निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप हम ही हैं, लेकिन उसकी हमें विस्मृति हो गई, वो हमारा खो गया है, और उसे उपलब्ध जो कराएगी वही उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है ना, खोए हुए ब्रह्म भाव को जो उपलब्ध करा दे। खोया हुआ का मतलब विस्मृत हुआ, जो ब्रह्म स्वरूप है उसे आपको बता दे कि ये आप हैं। वो कौन बताती है? अहम ब्रह्मास्मि विद्या। वो कैसे बताती है कि आपके ज्ञान नेत्र में जो एक अविद्या रूपी आवरण है, असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, इन दोनों को मिटा देती है। ये परोक्ष निर्विशेष ब्रह्म विद्या असत्वापादक आवरण को मिटा देती है, और अपरोक्ष ब्रह्म विद्या आभानापादक आवरण को मिटा देती है। और जैसे आवरण दूर हो जाए तो वो निर्विशेष ब्रह्म चिद्रूप होने से स्वयं ही मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है। उस आवरण को हटाने के लिए वृत्ति की जरूरत है, वह वृत्ति जिसे उपनिषद कहा जाता है वही पराविद्या है, मुंडक उपनिषद में बताई गई। उसे पराविद्या कहो, उपनिषद कहो, ये सब शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ उसका एक है। साक्षात्कार कहो, अप्रोक्ष ज्ञान कहो, ये ब्रह्म भाव की उपलब्धि कराता है। तो उस पराविद्या का वर्णन करने के लिए तीन प्रश्न है, चौथा पांचवा छठवा। तो द्वितीय प्रश्न जो भार्गव वैदर्भी कर रहे हैं, वो भार्गव के प्रश्न को देखिए। अथ हैनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ, येनम शब्द का अर्थ है आचार्य पिपलाद जी से, अथ का अर्थ है ओ अनंतर, किसके अनंतर? तो कबंधी के प्रश्न का समाधान होने के बाद अनंतर। ये नहीं कि एक एक ऋषि जो है छह सात में मिलकर के गए और एक एक अपना अपना प्रश्न पूछने के लिए गए हो और बाकी दूसरे काम में लगे हो। एक प्रश्न कर रहे हैं तो छह के छह बैठे हुए हैं वो प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए, और उस प्रश्न का उत्तर छह ने सुना। उसके बाद ये भार्गव नाम के जो छह ऋषि में से ही एक ऋषि हैं, विदर्भ देश में रहते थे तो वे इधरवी भी कहे जाते हैं, जाकर के क्या वहां बैठे ही हैं, वहीं पर प्रश्न करते हैं आचार्य पिपलाद जी से। क्या प्रश्न करते हैं कि भगवान, इनके तीन प्रश्न हैं, तीनों को मिलकर के एक प्रश्न कहा गया कि भगवान कत्तेव देवा प्रजाम विधारयन्ते, हे भगवान, ऐसा संबोधन आचार्य पिपला जी को किया है भार्गव ने, और ये कहा कि ये जो प्रजा है यानी शरीर है, इस शरीर को जीवित अवस्था में उसके स्थिति काल में धारण करके रखने वाले देव कितने हैं, कति शब्द संख्या विषयक होता है, किम शब्द से एक डति प्रत्यय होकर के कति शब्द बनता है, तो उसका अर्थ होता है कितने, तो कितने देव हैं जो इस शरीर को धारण करके रखते हैं। जैसे एक छत होता है, उस छत को धारण करके रखने वाले पिलर कितने हैं, ऐसे पिलर की संख्या पूछे। अब जितना लंबा चौड़ा छत होगा उतने अधिक पिलर देने होंगे ना, और जितना छोटा होगा तो उतने कम पिलर होंगे। तो ऐसे ये जो शरीर है, इस शरीर को धारण करके रखने वाले, शरीर रूपी छत को धारण करके रखने वाले पिलर स्थानीय देवता कितने हैं, देवताओं के संख्या विषयक ये प्रश्न है, और किसको धारण करने वाले, शरीर को धारण करने वाले देवता। और दूसरा प्रश्न है कि कतरे ये तत् प्रकाशयन्ते, तो कतर शब्द का कतरे रूप बनता है प्रथमा के बहुवचन में, और कतर शब्द दो में से एक का विशेष निर्धारण करने के लिए होता है, यानी दो विभाग हैं, दो प्रकार के हैं देव, वो दो प्रकार हैं, कार्य लक्षण देव और करण लक्षण देव। यहां उत्तर में बताया जाएगा आकाश आदि देवताओं को, जो द्वितीय मंत्र आ रहा है इसमें उत्तर दिया जाएगा, तो आकाश आदि देव बताए जाएंगे, यानी शरीर के, स्थूल शरीर के उपादान कारणभूत जो स्थूल आकाश आदि पंचभूत, ये भी जहां कहीं दिख रहे हैं वे नहीं, भूत सूक्ष्म स्थूल शरीर का उपादान कारण स्थूल पंचभूत हैं, लेकिन वे जहां कहीं की मिट्टी लेने से, जहां कहीं का पानी लेने से, थोड़ी अग्नि लेने से, हवा लेने से ये शरीर नहीं बनता, उसके लिए ईश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित, जैसे प्रत्येक के सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 17 तत्व तो है ना, सबके वेष्टि में अलग अलग है, सूक्ष्म शरीर वो 17 तत्वों का समूह है, ऐसे सबके स्थूल शरीर का उपादान कारण जिसे भूत सूक्ष्म कहा जाता है, वो बनता है स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है, लेकिन वह तत्व है, वह प्रत्येक जीव का अपना अपना अलग अलग है, और वह अलग अलग तत्व उन्हें यहां पर आकाश आदि पंचभूत शब्द से कहा जा रहा है, आकाश आदि पंचभूतों से ही बनता है, और उन पंचभूतों को भी न लेकर के कहा जाएगा उनके अभिमानी देवता। वे सब और इंद्रियों के अभिमानी देवता ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय, इनमें से ये सब के सब इस शरीर को धारण करके रखते हैं। जब भूत सूक्ष्म रहेगा, उपादान कारण घट का उपादान कारण जिस मिट्टी से घड़ा बना है वह उसके साथ बना रहेगा स्थिति काल में भी, तभी न घड़ा रहेगा। जिन तंतुओं से वस्त्र बना है वे वस्त्र के स्थिति काल में वस्त्र में अन्वित रहेंगे तो वस्त्र रहेगा, नहीं तो पहने हुए वस्त्रों में से एक 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 करके सब धागे निकाल लिए जाए तो दिगंबर हो जाए व्यक्ति, वस्त्र नाम की कोई अस्तित्व ही न रहे। ऐसे कार्य का अस्तित्व तो रहता है उसके उपादान कारण से। तो भूत सूक्ष्म है तो स्थूल शरीर भी है, इसलिए कत्येव देवा ये कत्येव देवा प्रजाम धारयन् विधारयन् ते, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि विधारण करने वाले इस शरीर को बनाए रखने वाले देवताओं में से कौन देवता है जो ये शरीर को धारण करना रूप जो अपना महात्म्य है, महत्ता है, व्यापार है, कार्य है, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, एडवर्टाइज देते रहते हैं समाचार पत्रों में भी और टीवी में भी और आकाशवाणी में भी, लोगों के ध्यान में आ जाए कि ये हम कर रहे हैं, ऐसा शरीर को धारण हम ही कर रहे हैं, हम न हो तो एक क्षण भी ये न रहे, ऐसा कौन कौन देवता करते हैं। ये एक प्रश्न है कि कतरे ये तत् प्रकाशयन्ते, अपने इस कार्य की ज्यादा लोगों में ख्याति हो जाए, प्रचार प्रसार हो जाए, ये कौन करते हैं ऐसा अपने आप से ही कि मैं ही इस शरीर को धारण करता हूं, मैं ही करता हूं, या अपनी अपनी श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए ऐसा कौन करता है इन देवताओं में से। और इन सब में शरीर को धारण करने वाले अनेकों में से कौन एक है जो वरिष्ठ है, यानी श्रेष्ठ है, प्रधान है, मुख्य है। ये तीन प्रश्न हैं भार्गव के, इन प्रश्नों का उत्तर कल आचार्य देंगे। हरिओम।